अध्याय 5 शैतान की तरकीबें। एक जवान होने के नाते यदि आप नहीं जानते कि आप अपने जीवन में शैतान को किस तरह रोक सकते हैं, तो ये न केवल पृथ्वी पर आपके जीवन को नाश करेगा, परंतु ये आपके अनंतकालीन नियति पर भी प्रभाव डालेगा। उसके हमले शुरू करने के लिए वह आपके बड़े होने तक नहीं रुकेगा, वह अभी आप पर हमला करेगा। इसलिए आपको उसके हमले करने के तरीकों के विषय में कुछ जानना जरूरी है। दुर्भाग्यवश अधिकांश लोगों की शैतान के विषय में कल्पना ओनिडा टीवी के विज्ञापन जैसे होती है, बजाय परमेश्वर के वचन की शिक्षा से, और इसीलिए वे शैतान को एक नुकसान न पहुंचाने वाला शरारती के रूप में देखते हैं, जिसके सिंह, पंजे और हरी पूंछ है। परंतु हम बाइबल में पढ़ते हैं कि शैतान का ऐसा डरावना रूप नहीं होता है। शैतान एक आत्मा है और वो मूर्ख नहीं है कि इस डरावने तरीके से आए कि लोग उससे डर कर भाग जाए, अन्यथा वो उन्हें किस तरह मार्ग से भटकाने में सफल हो सकेगा। शैतान एक विश्वास जीतने वाला कपटी है, जो पहले आपका भरोसा जीतता है और फिर आपको धोखा देता है। बाइबल कहती है कि शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की नाई आता है, जो आकर्षक दिखता है, और चूंकि वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान आता है, वो सारे संसार का भरमाने वाला कहलाता है। प्रकाशित वाक्य 12:9। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कराटे, अधिकांश लोग उसे मार्शल आर्ट का एक रूप समझते हैं, आत्मरक्षा का एक तरीका, परंतु ये सच्चाई का केवल एक भाग है। योगा के समान, जो केवल शारीरिक कसरत दिखाई देता है, परंतु वह सूक्ष्मता से लोगों को सूर्य की पूजा करना सिखाता है, सूर्य नमस्कार। उसी प्रकार कराटे के पीछे भी शैतानी ताकतें हैं। कराटे की दुष्टात्माएं होती है और मैंने दुष्टात्मा ग्रसित लोगों में उनका सामना किया है, परंतु वे स्वयं को आत्मरक्षा के नाम पर अहानिकारक संदेश वाहक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अदन की वाटिका में शैतान हव्वा के पास बड़े मोहक और आकर्षक रूप में आया। यदि वह प्रतिकर्षक घृणित रूप में आता, तो हव्वा उसके पास से भाग गई होती। इस सत्य को पुराने और नए नियम में देखिए, जो शैतान द्वारा लोगों को बहकाने के वर्णन से शुरू होते हैं। पुराने नियम में आदम और हव्वा को बहकाने के द्वारा, उत्पत्ति 3, और नए नियम में यीशु की परीक्षा के द्वारा, मत्ती 4। ये इस बात को बताता है कि हमारे शत्रु की तरकीबों को जानने के विषय में बाइबल कितना महत्व देती है। यदि हम उस उदाहरण का अनुकरण करें जिस तरह उन्होंने शैतान का सामना किया था, तो हम निश्चित रूप से गिरेंगे। परंतु यदि हम यीशु के तरीके का अनुकरण करेंगे, तो हम उस पर विजय पाएंगे। यीशु के पानी में बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के अभिषेक के तुरंत पश्चात, यहाँ तक कि लोगों के बीच उसकी सेवा शुरू करने से भी पहले, हम पढ़ते हैं कि शैतान के द्वारा परीक्षा लेने हेतु उसे पवित्र आत्मा के द्वारा जंगल पहुंचाया गया, लूका 4:1। ये सचमुच आश्चर्यजनक बात है कि शैतान से सामना करने के लिए यीशु को पवित्र आत्मा ले गई। कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि पवित्र आत्मा लोगों को परमेश्वर और स्वर्ग के दर्शन तथा प्रगटीकरण के लिए पर्वत शिखर पर ले जा सकता है। हाँ, वह हमें ऐसे स्थानों में ले जाता है, परंतु वह हमें ऐसे स्थानों में भी ले जा सकता है जहाँ शैतान द्वारा हमारी परीक्षा होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप ये बात स्वीकार करेंगे कि पवित्र आत्मा हमें ऐसे स्थानों में नहीं ले जाता जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। इसलिए वचन में लूका 4:1 के उस एक पद से हम ये समझ सकते हैं कि परीक्षाएं हमारे लिए उपयोगी होती है, अन्यथा पवित्र आत्मा यीशु को शैतान द्वारा परीक्षा लिए जाने के लिए नहीं ले जाता और न ही वह हमें शैतान द्वारा परखे जाने के लिए ले जाता है। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता, परंतु वह शैतान द्वारा हमारी परीक्षा की अनुमति देता है। शैतान द्वारा परीक्षाओं के समय पर ध्यान दीजिए। वो यीशु के पास तब आया जब यीशु 40 दिन और रात के उपवास के बाद भूखा था। हम भी जब शारीरिक तौर पर कमजोर होते हैं या जब हम कुछ मानसिक या भावनात्मक दबाव को अपने जीवन में महसूस करते हैं, तब शैतान हम पर हमला करने की कोशिश करता है। दूसरी बात, हम देखते हैं कि शैतान यीशु के पास तब आया जब यीशु का पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक हुआ और उसने स्वर्ग से सहमति की वाणी को सुना। शैतान हमारे पास उस समय आता है जब हम परमेश्वर की ओर से आशीष प्राप्त करते हैं। इसलिए आइए हम शैतान की युक्तियों के विषय में सतर्क रहें। जब परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीषित करता है, तब शैतान हमारी परीक्षा लेने और हमें झंझोड़ने को आता है, या जब हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं, बीमार होते हैं और शारीरिक रीति से नाकाम हो जाते हैं, तब वह हमारी परीक्षा लेने के लिए आता है और हमें निराश करता है ताकि वह हमसे पाप करवाए। हमें परमेश्वर का वचन पहले से ही दिया गया है ताकि हम शैतान के छल और युक्तियों को जान सके। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि शैतान किस तरह हमारे पास आता है, वह अक्सर किस समय आता है, वो कौन से प्रलोभन देता है, अन्य लोगों को उससे किस प्रकार का धोखा हुआ और यीशु उस पर किस प्रकार विजयी हुआ। शैतान के हम तक पहुंचने के कौन से माध्यम हैं? सर्वप्रथम हम देखते हैं कि उसने यीशु की शारीरिक इच्छा के माध्यम से परीक्षा ली। शैतान यीशु को सलाह देता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। इसी तरीके से शैतान हमारे पास भी आता है। वह हमें हमारी शारीरिक ऊंची जरूरतों को अनुचित रीति से पूरी करने के लिए लुभाता है, परंतु यीशु सतर्क था और उसने उत्तर दिया, लिखा है। हजार वर्ष पहले जब शैतान हवा के पास आया था, उसने परमेश्वर के वचन पर ये कहकर प्रश्न किया था, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? क्या आप जानते हैं कि संसार में केवल एक ही पुस्तक है जिससे शैतान हृदय से घृणा करता है? वह है बाइबल। और वह बाइबल से क्यों घृणा करता है? क्योंकि ये पुस्तक इस बात का खुलासा करती है कि वह शैतान कैसे बना। ये पुस्तक उसकी सभी योजनाओं का भंडाफोड़ करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हमें कलवरी पर उसकी पराजय के विषय में बताती है और उसके अंतिम न्याय के विषय में, जब यीशु इस पृथ्वी पर फिर आएगा। इसलिए शैतान बाइबल से घृणा करता है और पूरी कोशिश करता है कि वह लोगों को इसे पढ़ने से रोके, बल्कि वह आपको कोई और उपन्यास या कॉमिक्स पढ़ने की अनुमति देगा, परंतु बाइबल पढ़ने की नहीं, क्योंकि शैतान जानता है कि वे उपन्यास या कॉमिक्स आपको उस पर विजयी होने में सहायता प्रदान नहीं कर सकते, परंतु बाइबल ऐसा कर सकती है। जब यीशु इस पृथ्वी पर आया, वह हमारे समान मनुष्य के रूप में ही आया और हमारे ही समान हर क्षेत्र में परीक्षा का सामना किया, जैसे हम करते हैं। इब्रानियों 2:17 और 4:15। क्यों? ताकि वह हमारे लिए उदाहरण बन सके, ताकि वह हमें कह सके, मेरे पीछे चलो। मेरे उदाहरण का अनुकरण करो। और यीशु का क्या उदाहरण है जिसका हम अनुकरण कर सकते हैं? वह है परमेश्वर का वचन। शैतान को उस समय याद दिलाना है जब हमारी परीक्षा होती है। यीशु ने शैतान से वैसी चर्चा नहीं की जैसे हव्वा ने की थी। उसने ये कारण भी नहीं दिया कि क्या उसे भोजन की जरूरत है या नहीं, या भोजन अच्छी और उपयोगी वस्तु है आदि। उसे केवल इस बात से संबंध था कि परमेश्वर ने उसके वचन में क्या कहा है। और मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप केवल इसी सिद्धांत को लेकर अपना जीवन जिएंगे कि परमेश्वर ने उसके वचन में क्या कहा है, वही मेरे लिए अंतिम आदेश है, तभी आप हमेशा शैतान पर विजयी हो सकोगे, जैसा यीशु ने किया था। वास्तव में यीशु ने शैतान की ओर से होने वाली तीनों परीक्षाओं का उत्तर परमेश्वर का वचन याद दिलाते हुए ही दिया। और यहाँ हम हव्वा और यीशु के बीच विपरीतता को देखते हैं। यीशु की नीति ये थी, मेरी आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन मेरे शरीर के भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। या दूसरे शब्दों में, भोजन की आवश्यकता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने, समझने की और उसकी आज्ञा का पालन महत्वपूर्ण है। शैतान को पुराने नियम से वचन बताने का यीशु का यही तात्पर्य था। मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन हर एक वचन से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मेरे जवान मित्रों, क्या आपने इसे समझा? पहला नियम जिसके द्वारा हम शैतान पर विजय पा सकते हैं, वह इस बात को मानना है कि हमारे लिए शारीरिक जरूरतों की संतुष्टि से अधिक परमेश्वर का वचन ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वह भोजन, यौन संबंध या अन्य कुछ जरूरत हो। यदि आप पहले से ही सही रीति से ठान नहीं लेते तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में धोखा खाएंगे। आप ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि शैतान आपसे कहेगा कि हर रोज परमेश्वर का वचन पढ़ने के बजाय आपका रोज का भोजन करना ज्यादा जरूरी है। और ऐसे कई विश्वासी हैं जो शैतान पर विश्वास करते हैं। इस बात का सबूत ये है कि वे शैतान की बात पर विश्वास करते हैं। इस वास्तविकता में देखा जा सकता है कि वो कभी खाना खाना नहीं भूलते और खाने के लिए उनके पास समय की कमी भी नहीं होती, यहाँ तक कि दिन में 3 या 4 बार भी उनके पास समय रहता है। परंतु परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए वो अक्सर भूल जाते हैं या उनके पास व्यस्तता के कारण समय नहीं होता। विश्वासियों को धोखा देने और उन्हें कमजोर बनाने का कार्य किसने किया? बेशक स्वयं शैतान ने। हमारे पास यीशु का कितना अच्छा उदाहरण है, जिसने 40 दिन उपवास करने के पश्चात भी अपनी शारीरिक जरूरत को पूरा करने की बजाय परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। ये वो लोग हैं जो उनके जीवन में परमेश्वर के वचन को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं और वो ही नियमित रूप से विजय जीवन जिएंगे। प्रेरित यूहन्ना ने जवानों से कहा, 1 यूहन्ना 2:14 में, परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। किसी अन्य तरीके से शैतान पर विजय असंभव है। मैं आप सबको प्रोत्साहित करूंगा कि आप अपने जीवन में हर रोज परमेश्वर का वचन पढ़ें और उस पर मनन करें। आइए अब हम दूसरी परीक्षा के विषय में देखते हैं। यहाँ शैतान यीशु को मंदिर के कंगूरे पर से कूद जाने के लिए उकसाता है और बचाव के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर दावा करने को कहता है। ये एक परीक्षा थी कुछ ऐसा कर दिखाने की जिससे नीचे आंगन में खड़ी भीड़ से वाहवाह मिल सकती थी, जो उसे उनके बीच कूदने पर भी बिना चोट लगे उतरते हुए देख सकते थे। शैतान ने यीशु को जो करने को कहा, वास्तव में वह यीशु से आत्महत्या करवाने की एक चाल थी। अक्सर शैतान आपको कुछ ऐसा करवाने की कोशिश करेगा ताकि आपको दूसरों से प्रशंसा मिले या ये दिखाने के लिए प्रोत्साहित करेगा कि आप कोई महान व्यक्ति हैं। ध्यान दे कि शैतान ने वचन से भी कहा, स्वर्ग दूत तेरी रक्षा करेंगे। याद रखिए, शैतान आपको गलत तरीके से वचन बोलकर भी बता सकता है यदि वो आपको गुमराह करने में सफल होना चाहता है, और यदि आप इस बात से अनजान है कि वास्तव में वचन क्या सिखाता है तो वो आपको धोखा देगा। शैतान सुझाता है कि यीशु के नाम से कुछ विशेष कार्य करो। कई बार मसीहत का नाम इसलिए खराब हुआ है क्योंकि कई विश्वासियों ने कई मूर्खतापूर्ण कार्य किए हैं, वचन बताकर और परमेश्वर की परीक्षा करवाकर। उदाहरण के लिए, कुछ ऐसे विश्वासी हैं जो बीमार होने पर भी दवाई नहीं लेते। उनके पास उनके विश्वास के आधार के लिए कोई वचन नहीं होता, परंतु वो कल्पना करते हैं कि वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे मंदिर से नीचे ये सोचकर कूद पड़ना कि स्वर्गदूत अलौकिक रीति से सुरक्षा प्रदान करेंगे। उनमें से कई लोग आखिर में मर जाते हैं और अन्य जातियों के मध्य यीशु मसीह के नाम की निंदा होती है, जो ये धारणा प्राप्त करते हैं कि मसीहत एक मूर्खतापूर्ण मतांधता का धर्म है। और शैतान पीछे बैठकर हंसता है क्योंकि वो इन विश्वासियों को आत्महत्या करवाने के लिए सफल हो जाता है। उनके द्वारा जहर खाने से नहीं, परंतु उनके शरीर के कीटाणुओं को दवाई से मारने से इनकार करवाने के द्वारा, जिसे परमेश्वर ने हमारे उपयोग के लिए बनाया है। परमेश्वर की कई संतानें जो परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी पर उसके राज्य के कार्य में उपयोगी हो सकते थे, वे शैतान द्वारा इसी रीति से बहकाए जाने के कारण मर जाते हैं। शैतान हमेशा लोगों को कुछ मूर्खतापूर्ण कार्य करने के लिए उकसाता रहता है, ऐसा कुछ करने के लिए जो परमेश्वर की आत्मा और वचन की शिक्षा के विरुद्ध और कुछ अनोखा है। केवल नम्रता के द्वारा ही, अर्थात दीनता नम्रता से ही परमेश्वर को समर्पण करके खुद के लिए किसी भी तरह महिमा पाने के लिए नहीं, तो इस तरह हम शैतान पर विजय पा सकते हैं। जब शैतान ने यीशु को वचन बताया तो जवाब में यीशु ने भी उसे वचन कहा। उसने कहा, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। हमें मूर्खतापूर्ण बेहूदे और अनावश्यक कार्यों द्वारा परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, और फिर ये उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें इस बेवकूफी के परिणाम से बचाएगा। अब आखिर में तीसरी परीक्षा। अब अंत में शैतान उस विषय पर आया जो वो चाहता है, आराधना। उसने यीशु से कहा, यदि तू झुककर मुझे प्रणाम करे तो मैं संसार की सारी महिमा तुझको दूंगा। इस संसार की महिमा हम सब के लिए काफी बड़ी परीक्षा है। धन, प्रसिद्धि, सम्मान, ओहदा, अधिकार आदि। और शैतान कहता है, इनमें से तुझे क्या चाहिए मुझे बता और मैं तुझे वो दूंगा। केवल मेरे सामने थोड़ा सा झुक जा और ये सब मैं तुझे दूंगा। वह कहेगा, क्या तुम अपनी परीक्षा में पास होना चाहते हो? क्या तुम अपनी कक्षा में प्रथम आना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, केवल मेरे सामने झुक जाओ, घूस दो और वो प्रश्न पत्रिका पहले से ही हासिल कर लो। परीक्षक को घूस दो और कुछ नंबर हासिल कर लो। परीक्षा में नकल करो आदि। ये वे तरीके हैं जिनके द्वारा कई लोग आज शैतान के सामने झुक रहे हैं। अब जवानों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप शैतान की योजनाओं को जानें, निश्चित रूप से जानें। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आप परीक्षा में नकल करते हैं, तब आप अपने मन में ही शैतान के सामने ये कहते हुए झुकते हो कि मैं तेरे आदेशों का पालन करूंगा शैतान। मैं मेरे जेब में नोट्स का एक छोटा कागज परीक्षा कक्ष में ले जाऊंगा। नकल करने के कई और चतुर तरीके हैं जो जवानों ने इन दिनों खोज निकाले हैं, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है और उसकी चतुराई उन्हें प्रदान करता है जो नकल करना चाहते हैं। यदि शैतान ने यीशु को इस संसार की महिमा देने का प्रस्ताव रखा, तो क्या आप नहीं सोचते कि वह आपके सामने भी ऐसा ही प्रस्ताव रखेगा? जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आप पाएंगे कि शैतान आपसे बहुत सी बातें प्रस्ताव के रूप में कहेगा। ऐसे लोग हैं जो झूठे पेपर पे हस्ताक्षर करते हैं, धन के विषय में अधार्मिकता से चलते हैं और दुष्ट कार्यों में संलग्न होते हैं, सब कुछ थोड़ा अधिक धन पाने के लिए, थोड़ी और प्रसिद्धि या संसार में थोड़ा और बेहतर स्थान पाने के लिए। ये शैतान लोगों से लगातार कह रहा है, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। ऐसे परीक्षाओं का यीशु के पास केवल एक ही जवाब था। उसने कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। मत्ती 4:10। ये कितनी अद्भुत बात है कि हमें शैतान की योजनाओं से सतर्क करने के लिए हमारे पास परमेश्वर का वचन है। आप जवान लोग कितने आशीषित हैं कि आप इस छोटी सी उम्र में ही ये सब कुछ सीख सकते हैं। जब आपको इस संसार के कुछ बात हासिल करने के लिए किसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है और आप जानते हैं कि उसे पाने के लिए आपको अपने चरित्र की बलि चढ़ानी होगी, तो आप क्या करेंगे? याद करें कि यीशु ने शैतान से क्या कहा और यीशु के आदर्श का अनुकरण करें। और यही बात आप स्वयं शैतान से कहें। जब शैतान ये कहकर आपकी परीक्षा लेता है, तुम्हें बहुत धर्मी बनने की जरूरत नहीं है, वहाँ तुम्हें सच बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा झूठ बोल लो तो तुम्हें इस संसार में सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसे समय नीडर होकर उसे ये जवाब दे, मुझसे दूर हो शैतान, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा। लिखा है कि मुझे केवल परमेश्वर के सामने ही झुकना चाहिए और केवल उसी की आराधना करनी चाहिए, मैं यीशु के पीछे ही चलूंगा। जब से उसे सृजा गया था, शैतान हमेशा यही चाहता रहा कि दूसरे उसकी आराधना करें। इसीलिए वो परमेश्वर के समान होना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि आराधना केवल परमेश्वर की ही की जा सकती है। वह चाहता था कि अन्य स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। वह चाहता था कि आदम की जाति उसकी आराधना करे, और आश्चर्यजनक रीति से वह चाहता था कि ईशो भी उसकी आराधना करे। शैतान ईशु के विषय सफल नहीं हो सका, परंतु वह कई लोगों के साथ सफल हो जाता है। वास्तव में अधिकांश लोगों के विषय जो इस संसार में है, और यहाँ तक कि कई विश्वासियों के विषय में भी जो स्वयं के लिए कुछ सांसारिक प्राप्तियों के लिए अपने समर्पण के विरुद्ध समझौता कर लेते हैं, आज ऐसे लाखों लोग हैं जो शैतान के सामने झुकते हैं। वे ये नहीं समझते कि जब वे पाप के सामने झुक जाते हैं या उनके विवेक के विरुद्ध जाते हैं तो ऐसा करने से वे शैतान के सामने ही झुकते हैं। और वे ऐसा क्यों करते हैं? ताकि इस संसार की महिमा में से उन्हें भी कुछ मिले। जब आप सफलता, प्रसिद्धि या अधिकार पाना चाहेंगे, हो सकता है परीक्षा में सफलता या स्कूल में प्रसिद्धि या संसार में अधिकार का स्थान, तो शैतान आपके पास आएगा और कहेगा, ये सब मैं तुम्हें दूंगा, ऐसा करो, वैसा करो, जाओ और ये कहो, जाओ और ऐसा करो। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो आपको गलत सलाह दे रहा है, परंतु फिर भी आप उसे करते हैं और इस प्रकार शैतान के सामने घुटने टेक देते हैं। क्या आप सोचते हैं कि ऐसा सब करने के पश्चात भी आप स्वयं को मसीह कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई भी व्यक्ति मसीह नहीं हो सकता यदि वह शैतान के सामने घुटने टेकता है। तो हम क्या करें? यदि हमने पिछले वर्षों में शैतान के सामने घुटने टेके हो तो हमें उन सब समयों के लिए जब हमने ऐसा किया है पश्चाताप करना चाहिए। जो कुछ हमने गलत तरीके से चुराया या हासिल किया है उसे लौटाना चाहिए और यीशु से कहे कि वह हमें माफ करे और हमें धोकर शुद्ध करे। तो आइए हम इसे बिना विलंब करें। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान अभी भी हमारे जीवन पर अपना अधिकार बनाए रखे।